दानियल की पुस्तक संख्या 134 वो भविष्य सूचक घटनाक्रम 11 सितंबर 2001 से संयुक्त राज्य अमेरिका में आसन्न रविवार के कानून तक
11 सितंबर 2001 से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक 1,44,000 की मुहरबंदी का समय वो भविष्य सूचक काल है जिसमें अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन के हर दर्शन की पूर्ति होती है
जो के चार तरीके से प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मैं इस कहावत का अंत कर दूंगा और इज़राइल में वे इसे अब कहावत के रूप में नहीं कहेंगे, पर उनसे कहो दिन निकट हैं और हर एक दर्शन का परिणाम निकट है। यहेजकेल 12:23।
उस रेखा में तीसरा स्वर्गदूत फिर से प्रकट होता है और ये 22 अक्टूबर 1894 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन से 1863 के विद्रोह तक की अवधि द्वारा दर्शाया गया है। 1863 के विद्रोह को कादेश में प्राचीन इज़राइल के पहले विद्रोह द्वारा दर्शाया गया था और इसलिए लाल समुद्र पार करने से लेकर पहले कादेश विद्रोह तक का समूचा इतिहास उसका प्रतिनिधित्व करता है। पहला कादेश विद्रोह दूसरे कादेश विद्रोह का प्रतिरूप था और इस प्रकार हारून की मृत्यु से लेकर दूसरे कादेश विद्रोह तक की रेखा मुहरबंदी की रेखा में दो हराई जाती है। ये मिलराइटों के इतिहास में 1840 से 1894 तक दोहराया गया, जिसका प्रतीक मसीह के बपतिस्मा से लेकर क्रूस तक की अवधि थी, जो क्रूस से लेकर स्तेफनुस की पत्थर मारकर हत्या तक के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करती थी। पंक्ति पर पंक्ति प्रत्येक प्राचीन भविष्यद्वक्ता ने जिन दिनों में वे रहते थे उनसे अधिक इस काल के बारे में कहा।
प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं में से प्रत्येक ने अपने समय के लिए कम और हमारे लिए अधिक कहा। इस प्रकार की उनकी भविष्यवाणी हमारे लिए प्रभावी है। अब ये सब बातें उन पर दृष्टांत के लिए घटी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर जगत के अंत आ पहुँचे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:11, उन्होंने अपनी नहीं परंतु हमारी सेवा में उन बातों का प्रकाश किया जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा दिया गया है, जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया। ये वे बातें हैं जिनमें स्वर्गदूत भी झांकने की अभिलाषा रखते हैं। 1 पतरस 1:12।
बाइबल ने अपने समस्त निधियों को इस अंतिम पीढ़ी के लिए संचित किया है और एकत्र बांध रखा है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर व्यवहार इस अंतिम समय में कलीसिया में दोहराए गए हैं और दोहराए जा रहे हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस बुक 3:338-339।
अंतिम पीढ़ी पत्रस की चुनी हुई पीढ़ी है जो 1,44,000 है और उनका चयन 11 सितंबर 2001 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक होता है, जहां तब उन्हें एक ध्वज के रूप में ऊंचा उठाया जाता है। सब कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की सारी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियां अपने आप को दोहरा रही हैं। अंतिम दिनों की कलीसिया की अंतिम पीढ़ी में मुहर बंदी की रेखा में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियल की पुस्तक का पूरक है, एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना है। जो पुस्तक मुहरबंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं बल्कि दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। दूत ने आज्ञा दी, परंतु तू हे दानियल इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर अंत के समय तक मुहर बगा दे। दानियल 12:4। प्रेरितों के काम 550।
अंतिम दिनों से संबंधित दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग जिसकी मुहर खोली गई थी वे दर्शन है जो दानियल को शिनार की दो महान नदियों उले और हिद्देकेल के पास दिए गए थे। वे दर्शन दानियल अध्याय 8 के पद 13 और 14 और अध्याय 11 के पद 40 से 45 को दर्शाते हैं। 1,44,000 की मुहरबंदी का समय वो इतिहास है जिसमें मसीह स्वर्गीय महायाजक के रूप में अंतिम पीढ़ी के चुने हुओं को दिव्य और मानवीय से युक्त संबंध में सदा के लिए मुहर करता है। दानियल अध्याय 11 का पद 40 अजगर पशु और झूठे चेहरे नबे के उस संबंध की पहचान करता है जो मिलकर अब संसार को हरम गिदोन की ओर ले जा रहे हैं,
यह संबंध पृथ्वी से निकले पशु पर स्थित गणतंत्रवाद के सींग के इतिहास द्वारा दर्शाया गया है, जो पद 40 के इतिहास के दौरान बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में शासन करता है। पद 40 उसी इतिहास में बुद्धिमानों और मूर्खों के पृथक्करण की भी पहचान करता है, जो प्रोटेस्टेंटवाद के सींग के इतिहास को परिभाषित करता है, जिसकी शुरुआत 1798 से होकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक होती है। सारी बाइबल की पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और जब शौक वे मिलती हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दानियेल की पुस्तक को पूरक पढ़ती है, और कॉम्प्लीमेंट शब्द का अर्थ है परिपूर्णता तक ले जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाए गए अनुसार 144,000 की मुहरबंदी के समय, अंतिम दिनों में जिनका मुहर हटाया गया था, दानियेल की पुस्तकनियां परिपूर्णता तक पहुंचाई जाती हैं, जब उन्हें पंक्ति पर पंक्ति एक साथ रखा जाता है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 18 में प्रस्तुत इतिहास की रेखा पर, जो वचन 1-3 में आने वाली आवाज से आरंभ होती है और वचन 4 की दूसरी आवाज पर समाप्त होती है, दानियेल की पुस्तक में हिद्देकेल नदी द्वारा प्रदर्शित भविष्यवाणी के दर्शन की परिपूर्णता, परमेश्वर की प्रजा के उन शत्रुओं के बाह्य दर्शन की परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है, जो पवित्र स्थान और सेना को रौंद डालते हैं। दानियेल की पुस्तक में उलाई नदी द्वारा प्रदर्शित भविष्यवाणी के दर्शन की परिपूर्णता उस आंतरिक दर्शन की परिपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मसीह अपनी प्रजा के भीतर प्रकट होते हैं, जब वो दैवत्व को मानवता से जोड़ने की वाचा के वचन को अंतिम चुनी हुई पीढ़ी में पूरा करता है। मुहर लगाने का वो इतिहास जो पृथ्वी के पशु के गणतंत्रवादी सींग पर केंद्रित है, 2001 में पृथ्वी के पशु द्वारा पैट्रियट एक्ट बोलने से शुरू होता है और उस बोलने पर समाप्त होता है, जिसका प्रतिनिधित्व 1799 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स ने किया था, जिन्हें प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में पृथ्वी के पशु के अजगर की तरह बोलने के रूप में दर्शाया गया है। 1799 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स उस क्रम के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के घोषित किए जाने से शुरू हुआ था। उस भविष्य सूचक इतिहास की अवधि के मध्य में 1791 में पृथ्वी के पशु ने बोलकर संविधान को प्रभाव में लाया। 66776 का कथन पैट्रियट एक्ट के कथन के साथ मेल खाता है, और एलियन और सेडिशन अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले संडे लॉ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस इतिहास के मध्य में एक और कथन होना चाहिए जो सेप्टिनोशासे के साथ मेल खाता हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद 1-3 में वर्णित पहली आवाज को स्पष्ट रूप से इस रूप में पहचाना गया है कि वो उस समय आती है जब न्यूयॉर्क शहर की महान इमारतें गिरा दी गई। पद 4 की दूसरी आवाज को भी स्पष्ट रूप से शीघ्र आने वाले संडे लॉ के रूप में पहचाना गया है। वे दोनों आवाजें दैवी आवाजें हैं, क्योंकि वे दोनों उसी स्वर्गदूत की आवाज हैं जो अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने वाला है, जिसे सिस्टर व्हाइट प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 है के प्रथम स्वर्गदूत के रूप में पहचानती हैं। यीशु प्रथम स्वर्गदूत थे और वे सदैव किसी बात के अंत को उसके प्रारंभ से दिखाते हैं, इसलिए वे तृतीय स्वर्गदूत भी हैं जो अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने वाला स्वर्गदूत है। पहला स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में भी इस प्रकार चित्रित है कि वो 11 अगस्त 1840 को उतरा और इस प्रकार 11 सितंबर 2001 को स्वर्गदूत के उतरने का प्रतिरूप ठहरता है। बहन व्हाइट स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अध्याय 10 में जो स्वर्गदूत उतरा वो स्वयं यीशु मसीह ही थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की पहली और दूसरी आवाजें मसीही की ही आवाज है। उस इतिहास का प्रतिरूप 1776, 1789 और 1798 में मिलता है, जब पृथ्वी का पशु 3 बार बोला। प्रकाशित वाक्य 18 की दो आवाजों के बीच मसीही की जो आवाज सुनाई देती है वो तब सुनाई देती है जब वे प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में बोलते हैं,
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रविष्ट हुई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्हें उन्होंने देखा था उन पर बड़ा भय छा गया, और उन्होंने स्वर्ग से अपने लिए ये बड़ा शब्द सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ। और वे बादल पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए और उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा। प्रकाशित वाक्य 11:11-12।
जुलाई 2023 में स्वर्ग से एक आवाज, मसीह की आवाज ने उन दो गवाहों को पुनर्जीवित करना शुरू किया जिन्हें अथाह कुंड से निकले नास्तिक अजगर ने सड़कों पर मार डाला था। इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुड़ का मुद्दे एक भविष्य सूचक विषय बन गए, क्योंकि अगली आवाज जिसका प्रतिनिधित्व 97 करता है कि समय संविधान पूरी तरह उखाड़ फेंका जाएगा। 97-76, 97-2052 और 97-98 के तीनों मील के पत्थर 11 सितंबर 2001, जुलाई 2023 और जल्द आने वाले रविवार के कानून के रूप में चिह्नित 3 दैवीय आवाजों के साथ संरेखित होते हैं। वे 3 चरण तीसरी हाय के 3 चरणों से मेल खाते हैं जिनका प्रतिनिधित्व 11 सितंबर 2001, 7 अक्टूबर 2023 और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून द्वारा होता है, जब 7वीं तुरही जो तीसरी हाय है महान भूकंप की घड़ी में अचानक आ पहुंचती है। 2023 में पृथ्वी के पशु के दोनों सींगों में परिवर्तन शुरू हुआ, जैसा कि नबूकदनस्सर के गुप्त प्रतिमा वाले स्वप्न द्वारा दर्शाया गया है। अध्याय 2 में नबूकदनस्सर का स्वप्न एक भेद था जिसे केवल परमेश्वर प्रकट कर सकता था, और उसने वो भेद उन्हीं को प्रकट किया जिन्होंने दानियेल के अध्याय 1 में दर्शाई गई पहली परीक्षा पास कर ली थी। पहले अध्याय में दानियेल और वे 3 धर्मनिष्ठ पुरुष जिन्होंने पहली परीक्षा उत्तीर्ण की, वे वही थे जिन्होंने स्वर्गीय भोजन खाना चुना और बाबुल के आहार को ठुकरा दिया। वे वही हैं जिनका प्रतिनिधित्व यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में किया है, जो स्वर्गदूत के हाथ से छोटी पुस्तक लेते हैं जो कोई और नहीं स्वयं यीशु मसीह है, और उसमें निहित संदेश को खाते हैं। वे वही हैं जिनका वर्णन यूहन्ना के 6 अध्याय में है, जिन्होंने स्वर्गीय मन्ना का मांस खाना और इसका लहू पीना चुना, जिसे दूसरे वर्ग ने अस्वीकार किया, और जो तब मसीह से मुख मोड़कर सदा के लिए उसके साथ फिर नहीं चले। अध्याय 6:66। उसी संदर्भ में मसीह गलील में शिक्षा दे रहे थे, जिसका अर्थ एक धुरी या एक निर्णायक मोड़ है। वहां उन्होंने स्वर्गीय मन्ना का संदेश प्रस्तुत किया जिसे उनके शिष्यों को खाना था, ठीक जैसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में खाया था, और जैसे यहेजकेल ने अध्याय 3 में खाया था, और यिर्मयाह ने अध्याय 15 में खाया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में जब यूहन्ना ने वो छोटी पुस्तक खाई तो उससे जो इतिहास प्रतीकित हुआ था वो 1840 से 1844 तक के मिलेराइट्स के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता था, किंतु वो मिलेराइट्स के इतिहास की तुलना में 144,000 के मुद्रांकन के काल का अधिक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था। ये बात उस अध्याय में जब यूहन्ना को वो छोटी पुस्तक खाने के लिए निर्देश दिए गए स्पष्ट होती है।
और मैं स्वर्गदूत के पास गया और उससे कहा, मुझे वो छोटी पुस्तक दे। और उसने मुझसे कहा, इसे ले और पूरी तरह खा ले, ये तेरे पेट में कड़वा कर देगा परंतु तेरे मुंह में शहद के समान मीठा होगा। प्रकाशित वाक्य 10:9।
उस आयत में यूहन्ना को छोटी पुस्तक को लेने और खाने से पहले ही बता दिया गया था कि जिस संदेश को वो खाएगा वो कैसा अनुभव उत्पन्न करेगा। मिलरवादियों ने उनकी भविष्यवाणी इतिहास रेखा पर यूहन्ना के प्रतीकवाद की जो ऐतिहासिक पूर्ति हुई उससे पहले उन कटु मीठे अनुभवों को नहीं समझा था, परंतु 144,000 को पहले से बता दिया गया है और उन्हें इसे जानना आवश्यक है। जब यूहन्ना या तो पहले स्वर्गदूत के आंदोलन के इतिहास का या तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास का चित्रण करता है तो वो संदेश 2 वर्गों के उपासकों को उत्पन्न करता है और फिर अंत में कटु निराशा पर समाप्त होता है। जब यिर्मयाह ने छोटी पुस्तक खाई तब उसने ठट्ठा करने वालों की सभा के साथ संगति करना अस्वीकार कर दिया।
मैं हंसी उड़ाने वालों की सभा में नहीं बैठा और ना मैं आनंदित हुआ। तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा क्योंकि तूने मुझे रोष से भर दिया है। यिर्मयाह 15:17।
जब यहेजकेल ने छोटी पुस्तक खाई तो उसे इसराइल के घराने के विद्रोहियों को संदेश देने के लिए कहा गया जो सुनना नहीं चाहेंगे।
फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, जो कुछ तुझे मिले उसे खा, ये चर्मपत्र खा और इज़राइल के घराने के पास जाकर उनसे कह, परंतु इज़राइल का घराना तेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि वे मेरी नहीं सुनते, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना दुष्ट और कठोर हृदय है। यहेजकेल 3:1-7।
जब मसीह ने गलील में अपनी गृह कलीसिया को स्वर्गीय रोटी, जो उनका शरीर और उनका लहू थी, अर्पित की, तो जो समूह मुंह मोड़कर चला गया वो फिर कभी उनके साथ नहीं चला। और ये तथ्य कि ये अध्याय 6:66 में घटित हुआ, ये इंगित करता है कि भोजन करना 3-चरणीय परख प्रक्रिया का पहला चरण है, जो स्वर्गदूत के उतरने से आरंभ होती है। दूसरी परीक्षा में 2 वर्ग प्रकट होते हैं, चाहे वो यहेजकेल और कठोर बदिदई इसराइल के घराने के बीच का विरोध हो या एडवेंटवाद की शुरुआत और समाप्ति, दोनों में बुद्धिमान और मूर्ख कुवारिया या यिर्मयाह के साथ ठट्ठा करने वालों की सभा, या दानियेल की पुस्तक के 2 अध्याय में बाबुल के ज्ञानियों के विपरीत दानियेल और उसके 3 वीर। यूहन्ना अध्याय 6 की रेखा में गलील में आगमन 11 सितंबर 2001 है। मांस खाने और लहू पीने का संदेश वो इतिहास है जो अंततः शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक ले जाता है। आप वही है जो आप खाते हैं, जैसा कि अध्याय 1 में दानियेल और 3 वीरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और यूहन्ना 6 में जिन्होंने मसीह का मांस खाने और उसका लहू पीने को चुना, वे जो उन्होंने खाया उसकी छवि बन गए। वे मसीह की छवि बन गए, जबकि दूसरी श्रेणी जो मुड़ गई और मसीह के साथ फिर नहीं चली, ने पशु की छवि प्रकट की। एक श्रेणी सृष्टिकर्ता की छवि थी, दूसरी सृष्टि की छवि। यूहन्ना अध्याय 6:11 सितंबर 2001 के साथ गलील का अर्थ जोड़ता है, क्योंकि उसका अर्थ धुरी है। इस प्रकार चेलों के लिए मोड़ बिंदु को चिह्नित करता है। क्या वे स्वर्गीय आहार की ओर मुड़ेंगे या बाबुल के आहार की ओर? भविष्य सूचक मोड़ बिंदुओं पर ही मसीह आगामी काल के लिए ज्योति प्रकट करते हैं, जैसा कि 2001 में उनके अवतरण द्वारा प्रदर्शित है, जब पृथ्वी उनकी महिमा से आलोकित हो गई।
अतीत के इतिहास से सीखें मिलती हैं और इन पर ध्यान दिलाया जाता है, ताकि सब समझ लें कि परमेश्वर आज भी उसी रीति से कार्य करता है जिस रीति से वो सदैव करता आया है। इसके कार्य में और राष्ट्रों के बीच उसका हाथ आज भी ठीक वैसे ही दिखाई देता है, जैसा कि तब से दिखाई देता आया है, जब अदन में आदम को पहली बार सुसमाचार घोषित किया गया था। ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। ईश्वरीय प्रबंध में जब ये विभिन्न संकट आते हैं, तब उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। यदि उसे ग्रहण किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक अवनति और जहाज की डूब जाने जैसी तबाही आती है। प्रभु ने अपने वचन में सुसमाचार के आक्रामक कार्य को प्रकट किया है, जैसा कि वो अतीत में संचालित हुआ है और भविष्य में भी होगा, यहाँ तक कि अंतिम संघर्ष तक, जब शैतानी शक्तियां अपना अंतिम अद्भुत कदम उठाएंगी। बाइबल एको 26 अगस्त 1895।
ईश्वर सदैव पिछले इतिहास की उन्हीं रेखाओं पर कार्य करते हैं और वो कभी नहीं बदलते। कुछ निर्णायक मोड़ गलीलह होते हैं जो संकट होते हैं, और उन मोड़ों पर उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। 144,000 की मुहरबंदी की अवधि के लिए प्रकाश उस संकट में दिया गया जो 11 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ। यदि वो प्रकाश स्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक पतन और तबाही होती है। वो प्रकाश उपासकों की 2 श्रेणियां उत्पन्न करता है। मोड़ के बाद जो प्रकाश आता है वो उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो उपासकों की 2 श्रेणियां उत्पन्न करता है। दानियेल के 2 अध्याय में 2 परीक्षा का चित्रण है। वो परीक्षा जो 1 अध्याय की आहार संबंधी परीक्षा के बाद आती है, दानियेल के 1 अध्याय की 1 आयत में बताया गया है कि यहूदा अभी अभी नबूकदनेस्सर द्वारा विजित हुआ था और उसी का राज्य बाइबल की भविष्यवाणी का 1 राज्य बना। ये राष्ट्रों के इतिहास और कलीसिया दोनों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ये एक बड़ा संकट था और तब आहार से संबंधित परीक्षा का संदेश दिया गया। दानियेल और उसके 3 साथियों ने वो परीक्षा उत्तीर्ण की
और फिर दूसरे अध्याय में उन्होंने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। दूसरी परीक्षा एक ऐसे रहस्य से संबंधित थी जिसे कोई मनुष्य, यहां तक कि नबूकदनेस्सर भी नहीं जानता था। परीक्षा का प्रतीक नबूकदनेस्सर के स्वप्न की प्रतिमा थी। ये ऐसी प्रतिमा के विषय में जीवन मृत्यु की परीक्षा थी जिसकी किसी को पहचान नहीं थी। उस प्रतिमा ने बाइबल की भविष्यवाणी में बताए गए राज्यों की पहचान कराई और दानियेल के अध्याय 7 और 8 में दानियेल के दूसरे अध्याय के वही राज्य पशुओं के रूप में दर्शाए गए हैं। नबूकदनेस्सर की परीक्षा पशुओं की प्रतिमा की परीक्षा थी जो अंतिम दिनों में 144,000 पर मुहर लगाए जाने की अवधि के दौरान घटित होती है। अंतिम दिनों में पशु की छवि का निर्माण परमेश्वर के लोगों के लिए महान परीक्षा है जिनका प्रतिनिधित्व दानियेल और 3 वीर युवक करते हैं। ये वही परीक्षा है जिसे उन पर मुहर लगने से पहले उन्हें उत्तीर्ण करना होगा। इसलिए ये मुहर परक संदेश है जो या तो ऐसा वर्ग उत्पन्न करता है जो परमेश्वर की मुहर प्राप्त करता है और परमेश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करता है, या ऐसा वर्ग जो पशु की मुहर प्राप्त करता है और इस प्रकार पशु की छवि को प्रतिबिंबित करता है। दानियेल की पुस्तक के दूसरे अध्याय में पशु की छवि का संदेश उस ऐतिहासिक काल तक मुहर बंद रहा जब वो जीवन मरण का प्रश्न बन गया। नबूकदनेस्सर की प्रतिमा को मिलेराइटो ने सही ग्रुप में समझा था, परंतु मुहर लगाए जाने के इतिहास में नबूकदनेस्सर की प्रतिमा से जुड़ी एक गुप्त सच्चाई पर लगी मुहर खुल जाती है, पर केवल उनके लिए जिन्होंने उस संदेश को ग्रहण किया था जिसे निर्णायक मोड़ आने पर खाया जाना था। वो भोजन अंतिम वर्षाना वो संदेश है जो तब आरंभ हुआ जब प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत उतरा, और अंतिम वर्षाना संदेश रेखा पर रेखा की पद्धति है। उस सत्य को खाए बिना पशु की प्रतिमा के गठन का गुप्त संदेश देखा नहीं जा सकता। एलेन व्हाइट को स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि अनुग्रह काल समाप्त होने से पहले पशु की प्रतिमा का गठन हो जाएगा। दानियेल 2 में पशु की प्रतिमा के गठन का संदेश प्रतिमा के ऐसे गठन का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल निर्णायक मोड़ के बाद आने वाले इतिहास में ही दिखाई देगा जब तब प्रकाश दिया जाएगा। अब नबूकदनेस्सर की प्रतिमा के विषय में जो समझा जाता है वो ये है कि उसने बाइबल की भविष्यवाणी के केवल पहले 4 राज्यों की पहचान मात्र नहीं की, उसने सभी 8 राज्यों की पहचान की, और वही समझ पशु की प्रतिमा का एक नया गठन उत्पन्न करती है। वो सत्य ये दर्शाता है कि 8वां पशु 7ों में से है, और ये भी दर्शाता है कि संयुक्त राज्य जो पहले पशु की प्रतिमा बनाता है और उसके बाद समूचे संसार को भी वही करने के लिए बाध्य करता है, उस पशु की भविष्य सूचक विशेषता का धारक होगा जिसकी वो प्रतिमा बनाता है। उस प्रतिमा में ये शामिल है कि वो 8वां है जो 7ों में से है, और मसीह की 3 आवाज़ों के इतिहास में वो 11 सितंबर 2001 के त्रिनायक मोड़ 2023 की उस आवाज़ जो 2 गवाहों की मृत सूखी हड्डियों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए बुलाती है, और बाबुल से बाहर आने के आह्वान की आवाज़ इन सब को चिह्नित करती है। सन 2030 की वाणी वह वाणी है जो नबूकदनेस्सर की प्रतिमा का रहस्य और उसके बोलने का समय पहचानती है। 11 सितंबर 2001 उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जो वहीं से आरंभ होकर 18 जुलाई 2020 को समाप्त होती है। अध्याय 11 की दूसरी वाणी की अवधि 18 जुलाई 2020 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर होने वाली तीसरी वाणी तक की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। 18 जुलाई 2020 से शुरू होने वाली दूसरी अवधि में 3 नवंबर 2020 का मील का पत्थर और 6 जनवरी 2021 का मील का पत्थर शामिल है जब उन लोगों ने जिन्होंने 2 गवाहों को मार डाला था आनंद मनाना और उपहार भेजना शुरू किया, और इसमें जुलाई 2023 भी शामिल है जब जंगल में पुकारने वाली आवाज ने 7वीं तुरही की चेतावनी सुनाना शुरू किया। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
केबार नदी के किनारे यिज्गेल ने एक बवंडर देखा जो उत्तर दिशा से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक बड़ी घटा और एक आग जो अपने आप को लपेटे हुए थी और उसके चारों ओर चमक थी, और उसके मध्य से अंबर के रंग जैसा कुछ दिखाई देता था। कई पहिए जो एक दूसरे को काटते हुए थे 4 जीवित प्राणियों द्वारा चलाए जा रहे थे।
इन सब के बहुत ऊपर एक सिंहासन का स्वरूप था जो नीलम पत्थर के समान दिखाई देता था, और उस सिंहासन के स्वरूप पर ऊपर एक मनुष्य के समान स्वरूप दिखाई देता था, और करूबों में उनके पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ का रूप दिखाई देता था। येजगेल 1:4-26:10-8। पहियों की रचना इतनी जटिल थी कि पहली दृष्टि में वे अव्यवस्थित प्रतीत होते थे, परंतु वे पूर्ण सामंजस्य में चलते थे। स्वर्गीय प्राणी करूबों के पंखों के नीचे जो हाथ था उसके द्वारा संभाले और निर्देशित होकर इन पहियों को गति दे रहे थे, और उनके ऊपर नीलम के सिंहासन पर अनंत प्रभु विराजमान था, और सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था जो ईश्वरीय करुणा का प्रतीक था। जैसे करूबों के पंखों के नीचे जो हाथ था उसके मार्गदर्शन में चक्कों जैसी जटिल व्यवस्थाएं थीं, वैसे ही मानवीय घटनाओं का जटिल खेल भी दैवी नियंत्रण में है। राष्ट्रों के संघर्ष और कोलाहल के बीच जो करूबों पर विराजमान है वो अब भी पृथ्वी के मामलों का मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रों का इतिहास जो एक के बाद एक अपने लिए निर्धारित समय और स्थान पर स्थित रहे हैं और अनजाने में उस सत्य की गवाही देते रहे हैं जिसका अर्थ वे स्वयं नहीं जानते थे, हमसे बोलता है। आज प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महान योजना में एक स्थान सौंपा है। आज मनुष्यों और राष्ट्रों को उसके हाथ के साहौल से मापा जा रहा है जो कोई भूल नहीं करता। सब अपने ही चुनाव द्वारा अपनी नियति का निर्णय कर रहे हैं, और परमेश्वर अपनी अभिप्रेत योजनाओं की सिद्धि के लिए सब पर अधिराज्य कर रहा है। वह इतिहास जिसे महान मैं हूँ ने अपने वचन में निर्धारित किया है, भविष्यवाणी की श्रृंखला में कड़ी पर कड़ी जोड़ते हुए अतीत के अनादि काल से भविष्य के अनंत काल तक हमें बताता है कि युगों की यात्रा में आज हम कहाँ हैं और आने वाले समय में क्या अपेक्षित है। अब तक वर्तमान समय तक जो कुछ भी भविष्यवाणी ने घटित होने के रूप में पहले से बताया है वह इतिहास के पन्नों पर अंकित हो चुका है, और हम आश्वस्त हो सकते हैं कि जो कुछ अभी आना शेष है वह अपने क्रम में पूर्ण होगा। शिक्षा 790 व 791।